From the conference center at Temple Square in
शहर में टेम्पल स्क्वायर सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर का 183वीं वार्षिक जनरल सम्मेलन है। वार्ताकारों को जनरल अधिकारियों और गिरजी के जनरल कार्यालयों के साथ इस अधिवेशन के लिए संगीत मॉर्मन गायन मंडली द्वारा चुना गया है।
This broadcast is furnished as
Bonnie Miller Distribution द्वारा इस प्रसारण का प्रबंध से जन सेवक किया गया है। कोई भी पुनरुत्थान करना, रिकॉर्डिंग, प्रतिलिपि बनाना या इस कार्य का दूसरा प्रयोग करना बिना किसी लिखित समिति के वर्जित है।
President Henry B. Eyring,
अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग गिरजा के प्रधान अध्यक्षता के प्रधान सलाहकार इस अधिवेशन का संचालन करेंगे।
Brothers and sisters, we welcome you.
भाइयों और बहनों, अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के 183वें वार्षिक महासम्मेलन के चौथे सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जो कि इस महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, ने कहा है कि मैं इस सत्र का संचालन करूं। हम विश्व भर में आप सभी को शुभकामनाएं और आशीष देते हैं जो इस कार्यवाही में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या उपग्रह प्रसारण द्वारा भाग ले रहे हैं। हम जनरल अधिकारियों और जनरल पद अधिकारियों का आज सुबह यहाँ उपस्थित होने के लिए आभार प्रकट करते हैं। इस सत्र का संगीत मंडप गायक मंडली द्वारा मैक बिलबर्ग के निर्देशन में होगा। एंड्रू एर्सवर्थ और क्ले क्रिस्टेंसन आर्गन बजाएंगे। गायक मंडली ने गो फोर्थ विद फेथ गाकर इस सत्र को आरंभ किया है और अब वे हमारे लिए लेट जायन इन हर ब्यूटी राइज गाएगी। फिर सत्र के एल्डर स्टीवन ई स्नो प्रार्थना करेंगे।
Thank you.
our Father in heaven, this beautiful Sabbath morning, we give
इस सबत दिन की सुबह हम आपके पास आते हैं आपके सदस्य के रूप में और इस सेशन की जनरल कॉन्फ्रेंस में हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि एक साथ एक होकर हम इस पूरे संसार में आपके पास आए हैं और आप हम मांगते हैं कि आप हमें आशीष दीजिएगा और हम आगे और अपनी जिंदगी को सुधार सकें और आगे बढ़ सकें यहाँ इस दिन हम प्रेयर करते हैं अपने प्रेयर दोस्तों के लिए अपने पड़ोसियों के लिए और अपने लोगों के लिए कि हम वो अच्छे से कर सकें अपनी जिंदगियों में और उनको पढ़ा सिखा सकें और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वे कि आपकी आत्मा इस बीच में आए और हम अच्छे से सीख सकें और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन
अब हम प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार अध्यक्ष डीटर वुडरॉफ को सुनेंगे उसके बाद गायक मंडली कम फॉलो में गाएगी गाने के बाद हम 12 पीड़ितों के परिषद के एल्डर नील एंडरसन को सुनेंगे उसके पश्चात प्राथमिक महादेश बहन रोजमेरी विक्सो हमारा संबोधन करेगी
I have a cherished painting in my office.
मेरे पास मेरे दफ्तर में लगन से बनाया गया चित्र है जिसका शीर्षक संसार में प्रवेश करना है वह मेरे एक मित्र द्वारा बनाई गई थी डेनिश चित्रकार जाना बेनेथिन कोपेनहेगन डेनमार्क में जो पहले स्टेक अध्यक्ष थे चित्रकारी दर्शाती है एक अंधेरा कमरा जिसके साथ खोला गया दरवाजा जहां से प्रकाश चमकता है ये मेरे लिए रोचक था कि प्रकाश दरवाजे के अंदर आता हुआ पूरे कमरे में नहीं दरवाजे के तुरंत सामने की जगह को दर्शाता है मेरे लिए ये चित्र में अंधेरा और उजियाला जीवन के लिए लक्षण है ये हमारी परिस्थिति का भाग है जैसे नस्वर जाति कभी कभी महसूस करते हैं जैसे हम अंधकार से घिरे होते हैं शायद अपने प्रियजनों को खोना बच्चों का भटकना हमें शायद भयानक बीमारी का पता चलना नौकरी की चुनौतियों और शायद शक या डर के बोझ से दबे जाना या हम शायद अकेलेपन से या प्यार न पाना हो सकता है परंतु यहां तक कि हम वर्तमान परिस्थितियों के मध्य में गुम होना महसूस करते हैं परमेश्वर ने उसकी ज्योति का वादा किया है उसने वादा किया है हमें ज्ञान से रास्ता दिखाने का और अंधकार से बाहर जाने का रास्ता बताने का अंधकार से कमरा भर गया मुझे अच्छा लगता है आपको उस महिला के बारे में बताने के लिए जो अंधकार से भरे कमरे में बड़ी हुई थी मैं उसे जेन कहकर बुलाता हूँ जब जेन 3 वर्ष की थी तब से उसे बार बार पीटा जाता था नीचा दिखाते और अनादर किया जाता था उसे धमकियां दी जाती और मजाक उड़ाया जाता था हर सुबह वो उठती पर नहीं जानती थी कि वो अगले दिन तक जिंदा रहेगी भी या नहीं लोग जिन्हें उसे बचाना चाहिए था वो ही उसे पीड़ित करते या अनादर करते थे अपने को बचाने के लिए जिन ने महसूस करना बंद कर दिया था उसने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी तब वो अपनी भयानक सच्चाई से पत्थर हो गई थी उसके संसार में कोई उजियाला नहीं था तब उसे अंधकार को समर्पित कर दिया गया था शून्यता के साथ जो कि बुराई की कठोरता में लगातार रहने से हो सकती है उसने मना लिया था कि कोई भी क्षण उसका आखिरी क्षण हो सकता है तब 18 की आयु में उसने अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर की खोज की थी सुसमाचार की पुनर्स्थापना की खुशी और आशा ने उसके हृदय को भर दिया था और उसने बपतिस्मा लेने का निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था पहली बार के लिए ज्योति ने उसके जीवन में प्रवेश किया और उसने उसके सामने उज्जवल रास्ता दिखाया था अपनी अंधेरी दुनिया को छोड़कर उसने स्कूल जाने का निर्णय लिया जो उससे सताने वालों से बहुत दूर था आखिरकार उसने अंधकार और बुराई के माहौल से मुक्त होने का एहसास किया। उद्धारकर्ता की मधुर शांति और चमत्कारी चंगाई को स्वतंत्रता का आनंद लिया था। इसलिए साल के बाद उसका सताने वाला मर गया था। जेन फिर से अपनी युवा अवस्था और बुरी घटनाओं से भयभीत हो गई थी। अति गंभीरता से दुख और क्रोध उसकी सुंदर ज्योति को नष्ट करने की धमकी दे रहे थे जो उसे सुसमाचार से मिली थी। उसने माना कि यदि वो अंधकार को उस पर आने देगी, उसकी पीड़ा आखिरकार जीत जाएगी। उसने सलाह ली और चिकित्सा से मदद लेकर और पहचाना शुरू किया कि उसके लिए चंगाई का अच्छा रास्ता है कि वो अंधकार को समझकर और स्वीकार करे कि वो है, परंतु उसमें निवास नहीं करते हैं। अब वो जानती है ज्योति भी है और वहां निवास करने का चुनाव करें। अंधेरे अतीत को छोड़कर जेन ने आसानी से प्रतिशोध विषैले या जहां तक कि बलशाली बन सकती थी, परंतु न ही उसने अंधकार को फैलाने के लालच से लड़ने का क्रोध को घाव या कटुता को बाहर निकाला था। इसके स्थान पर उसने आशा के लिए उपवास रखा कि परमेश्वर की सहायता के साथ वो चंगाई पा सके। उसने ज्योति की किरण को चुना और अपना जीवन दूसरों के मदद करने में समर्पित किया। इस निर्णय ने उसका अतीत को पीछे छोड़ा और महिमा भरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाया था। वो स्कूल शिक्षिका बन गई और आज 10 साल बाद उसका प्रेम कई सौ बच्चों के जीवन को प्रकाशित करता है। उनकी मदद करने के ये जानकर कि वो योग्य है, कि वो महत्वपूर्ण है, वो थके हुए कमजोरों की, पीड़ितों की और निराश लोगों की रक्षक बन गई। वो शक्ति देती है और हर कोई जो उसके चारों तरफ है की प्रेरणा बनी। जेन ने सीखा था कि चंगाई आती है जब हम अंधेरे से दूर जाते हैं और आशा की तीव्र ज्योति की ओर बढ़ते हैं। ये वास्तविक क्रिया है विश्वास, आशा और उदारता की। न कि सिर्फ उसने अपना जीवन सुधारा, परंतु हमेशा के लिए बहुतों के जीवन को आशीषित किया। आपके बीच में कुछ ऐसे भी हैं जो महसूस करते हैं कि अंधकार आपके ऊपर हस्तक्षेप करता है। आप चिंता, डर या शक के बोझ को महसूस करते हैं। आपके लिए और हम सबों के लिए मैं एक अद्भुत और निश्चित सच्चाई को दोहराता हूँ। परमेश्वर की ज्योति सत्य है, हम सबों के लिए उपलब्ध है, हम सब चीजों को जीवन देती है। इसमें शक्ति होती है गहरे भाव को भरने की। ये अकेलेपन और हमारी आत्माओं की बीमारी की चंगाई का मलहम हो सकती है। गहन उदासी में ये उज्जवल आशा के पौधे का बीज बनती है। ये दुख की गहरी खाई को भी प्रकाशित कर डालती है। ये हमारे आगे का रास्ता दिखा सकती है और हमें रात के गहरे रास्ते से निकालकर नए प्रकाशित मार्ग में लाती है। ये यीशु मसीह की आत्मा है जो संसार में आए हर मनुष्य को रोशनी देती है, किंतु आत्मिक ज्योति बहुत कम उनके पास आती है जो अंधेरे में बैठकर किसी की आने का इंतजार करते हैं कि कोई आकर स्विच को झटका दे। ये विश्वास का काम है, हमारी आंखों को मसीह के प्रकाश से खोलने का। आत्मिक ज्योति का अनुभव सांसारिक आंखों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यीशु मसीह ने खुद कहा था, मैं ज्योति हूँ जो अंधकार में चमकती है और अंधेरा उसमें समझ नहीं पाता है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उसे जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो कैसे हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ज्योति की आशा के लिए खोलें? पहला, शुरू करें जहां आप हैं। क्या क्या ये आश्चर्यचकित नहीं है कि जानते हुए कि हमें आशीषों का अनुभव करने और अपने स्वर्गीय पिता के उपहार पाने में संपूर्ण हीन की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की आशीषों का पाने के लिए अंत की लकीर तक जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्वर्ग अलग होने लगेगा और हमारे पहले कदम के साथ जिसे हम ज्योति की ओर बढ़ाए आशीष स्वर्ग से आशीषें हम पर उतारी जाएंगी। शुरू करने की सही जगह जहां पर आप अभी हैं, आप कितनी योग्य हैं ये कोई मायने नहीं रखता। जैसे आप सोचते हैं या आप कितने से पीछे हैं, जितनी जल्दी आप स्वर्गीय पिता की खोज करना आरंभ करेंगे उसी क्षण से आशा की ज्योति जागृत होगी, प्रसन्न प्रतिष्ठा तुम्हारी आत्मा में होगी। अंधकार एकदम से गायब नहीं होता है, परंतु रात हमेशा भोर होने से पहले चली जाती है, ज्योति आती है। दूसरा, परमेश्वर की ओर अपना हृदय मोड़ें, अपनी आत्मा को प्रार्थना में ऊपर उठाओ और अपने स्वर्गीय पिता को समझो कि आप कैसा महसूस करते हैं। अपनी कमजोरियों को जानो, अपने हृदय से कहो और अपना आभार व्यक्त करो। उसे जानने दो कि आप किस परेशानी से गुजर रहे हो। मसीह के नाम से शक्ति और सामर्थ्य का अनुग्रह करो। मांगो कि आपके कान खोले जाएं कि आप उसकी आवाज सुन सको। मांगो कि आप आंखें खोली जाएं और आप उस ज्योति को देख सको। तीसरा, रोशनी में चलना। आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आप गलतियां करते हैं, वो जानता है कि आप ठोकर खाएंगे, शायद कई बार ये उसे दुखी करता है, परंतु वह आपसे प्रेम करता है। वह आपकी आत्मा को तोड़ना नहीं चाहता है, इसके विपरीत वो चाहता है कि आप ऊपर खड़े हो और वो बने जो आपको बनने के लिए भेजा गया है। अंत में उसने अपने पुत्र को रास्ता दिखाने भेजा था और दर्शाने कि ठोकर खाने से रास्ते से बचकर कैसे सुरक्षित निकला जाए। उसने हमें सुसमाचार दिया जो हमें शिष्यों के रास्ते सिखाएगा। ये हमें वो शिक्षा देगा जिसे हमें जानना है, करना है और उसके प्रकाश में चलना है, उसके पुत्र के पद चिन्हों का अनुसरण करके चलना है। रोशनी अंधेरे से ऊपर आती है। हाँ, हम गलती करते हैं, हाँ हम हिम्मत करते हैं, परंतु जैसे परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम को बढ़ाना और अपने पड़ोसी से प्रेम करने की प्रबलता को हम खोजते हैं, सुसमाचार की ज्योति हमारे चारों तरफ और ऊपर उठाती है। अंधकार सच में फीका हो जाएगा क्योंकि वो प्रकाश में नहीं रह सकता। जैसे हम परमेश्वर के पास जाते हैं वो हमारे पास आता है और दिन प्रतिदिन हमारे अंदर परमेश्वर की आशा की ज्योति और बढ़ेगी, उज्जवल और उज्जवल संपूर्ण दिन के आने तक। परंतु जैसे परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम को बढ़ाना और अपने पड़ोसी से प्रेम करने की प्रबलता को हम खोजते हैं, सुसमाचार की ज्योति हमारे चारों तरफ और ऊपर उठाती है। अंधकार सच में फीका हो जाएगा क्योंकि वो प्रकाश में नहीं रह सकता। जैसे हम परमेश्वर के पास आते हैं वो हमारे पास आता है।
We were in West Africa, a beautiful part of the world where the church is growing and the Latter-day Saints.
कुछ सालों पहले मेरी पत्नी हेरिट और मेरे साथ एक याद करने वाला अनुभव हुआ जिसमें हमने इस वादे को पूरा होते देखा था। हम पश्चिम अफ्रीका में थे, संसार का एक सुंदर भाग जहां गिरजा बढ़ रहा था और अंतिम दिनों के संत प्रसन्न थे, तथापि भी कोई चुनौतियों का सामना कर रहा था। विशेषकर मैं दुखी था गरीबों को देखकर। शहरों में वहाँ बेरोजगारी थी और परिवार दैनिक जरूरतों और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसने मेरा दिल लुटा जा रहा था ये जानकर कि हमारे अनमोल गिरजा के सदस्य ऐसी दशा में रहते हैं। परंतु मैंने ये भी जाना कि अच्छे सदस्य एक दूसरे की मदद करने में लगे रहते हैं कि कहीं कोई भूखा न रह जाए। हम आखिरकार पहुंच गए, हमने एक सभा में खड़े होकर शहर के पास, परंतु विपरीत में लोग बोझ से दबे और अंधकार द्वारा निकले जाने के लिए महसूस करते थे। हमने खुशहाल लोगों को देखा जो ज्योति की किरणें फैला रहे थे, सुसमाचार के प्रति उनकी खुशी का आलम संक्रामक और हमारी आत्मा को बढ़ाने वाला है। प्रेम उनकी जिस नम्रता से व्यक्त किया था, उनकी मुस्कान अति प्रिय और असली थी। याद है मुझे वो आश्चर्य करने वाला समय यदि वहाँ ग्रह के आनंदित लोगों को होना संभव हो सकता था। यहाँ तक कि ये प्रिय संत परेशानियों और मुसीबतों से घिरे थे, वे ज्योति से भरे थे। सभा शुरू हुई और मैंने बोलना आरंभ किया, परंतु जल्दी ही इमारत में बिजली चली गई थी और हम पूरी तरह से अंधेरे में थे। एक लम्हे के लिए मैं किसी को भी कलीसिया में देख नहीं सकता था, परंतु मैंने हमारे संतों की हजारों मुस्कान को देखा और महसूस कर सकता था। ओह, मैं कितना खुश था और अद्भुत लोगों के साथ। चैपल के अंधेरा फैला हुआ था और मैं और मेरी पत्नी के पास बैठ गया और बिजली के आने का इंतजार करने लगा। जैसे हम इंतजार कर रहे थे, कुछ अद्भुत होना था। कुछ आवाजों ने एक पुनरुत्थान का स्तुति गीत गाना शुरू किया और तब दूसरे भी उनसे जुड़ गए और तब और भी। जल्दी एक मधुर कोरस की आवाज ने चैपल को व्याकुलता से भर दिया था। इस गिरजे के सदस्यों और स्तुति गीत पुस्तिका की जरूरत नहीं थी, वे सारे गीतों के शब्द को जानते थे जिसे वे गाते हैं, और वे एक के एक गीत जोश के साथ गाते और आत्मा जो कि मेरी आत्मा को छू गई थी। आखिरकार ज्योति चारों ओर फैलती है और कमरा ज्योति से भर गया था। हेरियट और मैंने एक दूसरे को देखा, हमारे गाल आंसुओं से भर गए थे। बड़े से अंधकार के बीच ये सुंदर अद्भुत संत इस गिरजे की इमारत को भरते हैं और हमारी आत्माओं को ज्योति से। ये हमारे लिए गंभीरता से चल रहा क्षण था, एक हैरियट और मैं कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, समय दर समय हमारा जीवन इनके द्वारा संपर्क में रहता है या इन अंधेरों से लिपटा रहता है। कभी कभी रात जो हमारे चारों ओर निर्दयी, उत्साहहीन और भयभीत नजर आती है। मेरा हृदय बहुतों के दुखों के लिए जिसे आप झेल रहे हैं दुखी है। अकेलेपन का दर्द और निरस्ता का डर आप शायद अनुभव कर रहे हों, किंतु मैं गवाही देता हूं कि हमारा जीवित आशा मसीह यीशु में है। वो सच्चा, शुद्ध और पवित्र संस्कार की शक्ति से प्रवेश करता है। मैं गवाही देता हूं कि मसीह के साथ अंधकार सफल नहीं हो सकता। अंधकार मसीह की ज्योति पर विजयी नहीं होगा। मैं साक्षी देता हूं कि अंधकार जीवित परमेश्वर के पुत्र की प्रतिभाशाली ज्योति के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मैं आप सभी को उसके लिए अपने हृदयों खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। उसे प्रार्थना और अध्ययन करके खोजें, उसके गिरजे में आएं, उससे और उसके सुसमाचार से सीखें, सक्रियता से भाग लें, एक दूसरे की मदद करें और हमारे परमेश्वर की खुशी से सेवा करें। भाइयों और बहनों, यहाँ तक अंधेरी रात के बाद संसार का उद्धार करता हमें धीरे से, मधुरता से और भोर की तीव्रता से मार्गदर्शन करेगा, जो कि आपको निश्चय ही आगे बढ़ाएगी। जैसे आप परमेश्वर की आशा की ज्योति की ओर चलते हैं, आप करुणा, प्रेम और स्वर्गीय पिता की अच्छाइयों को पाएंगे, जिसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। इसी में मैं यीशु मसीह के नाम में गवाही देता हूं। आमीन।
The mortal life of Jesus Christ was filled.
यीशु मसीह का नश्वर जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। एक कुंवारी माँ, एक नया तारा, स्वर्ग दूतों का दिखाई देना, अंधों का देख पाना, लंगड़ों का चलना, गैसेमनी और कर्म में स्वर्ग दूत और सभी चमत्कारों में महान उनका महिमापूर्ण पुनरुत्थान। क्या आप पहाड़ पर 11 प्रेरितों के उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं जब पुनः जीवित प्रभु उनके पास आया था और उसने कहा, इसलिए तुम जाओ और सभी राष्ट्रों में शिक्षा दो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तुम समस्त विश्व में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। सभी राष्ट्र, समस्त विश्व, हर प्राणी, क्या यह संभव था? यद्यपि यीशु ने उन्हें आश्वासन दिलाया था, फिर भी उन्हें अवश्य संदेह हुआ होगा कि क्या सुसमाचार का प्रचार करने में उनके साथ चमत्कार होंगे। विश्वास ने संदेह को दूर किया और पत्रस ने ऊंची आवाज में कहा, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, कान लगाकर मेरी बातें सुनो। यीशु नासरी, जिसे तुमने पकड़वाया और अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया है और जिसके हम सब गवाह हैं। वह एक अत्यधिक आत्मिक प्रवाह का दिन था और 3,000 लोगों का बपतिस्मा हुआ था, जैसा कि यीशु ने प्रतिज्ञा की थी। चिन्ह और चमत्कार विश्वासियों के विश्वास के साथ हो रहे थे। 183 साल पहले जब यीशु मसीह का गिरजा पृथ्वी पर पुनः स्थापित किया गया था, उसके शिष्यों के छोटे से दल को प्रभु के आदेश के रूप में उसके सदियों पहले बोले शब्दों को दोहराया गया था, चेतावनी की वाणी सभी लोगों के पास जाएगी, क्योंकि सच में यह आवाज आगे बढ़नी चाहिए समस्त विश्व में और पृथ्वी के अंतिम शोर तक भी। सभी लोगों, समस्त विश्व में, पृथ्वी के अंतिम छोर तक, क्या यह संभव था? उद्धारकर्ता ने अपने अंतिम दिनों के संतों को आश्वासन दिया था, लेकिन क्या वे इस कार्य को पहुंच और नैतिक अनुमान ला पाए थे? फिर से विश्वास ने संदेह को दूर किया और हजारों का बपतिस्मा हुआ।
इंग्लैंड
में एल्डर विलफोर्ड वुड्रफ ने पाया, संपूर्ण समाज उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रभु की आत्मा उन पर आई और उन्होंने बेनबो फॉर्म में 45 प्रचारकों और सैकड़ों सदस्यों का बपतिस्मा किया था। हमारा समय भी भिन्न नहीं है। जब एल्डर डेविड ए बेडनार और मैं प्रचारक थे लगभग 40 साल पहले, मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं कि लाल कुर्सियों में बैठे केवल हम ही ऐसे पूरे प्रचारक नहीं, कम से कम 16,000 प्रचारक थे। अब हमारे पास 65,000 हैं, पहले से कहीं ज्यादा। तब 562 स्टेक थे, आज 3,000 से अधिक हैं। उस समय हमारे वार्ड और शाखाएं 59 देशों में थीं। विश्व में आज 224 देशों और प्रांतों में 179 में हमारी कलीसियाएं हैं। हम संख्या में कम हैं, ठीक जैसे नफी ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन साथ ही आप और मैं डेनियल की भविष्यवाणी के चश्मदीद गवाह हैं। एक पत्थर काटा बिना हाथों के संपूर्ण पृथ्वी को ढक रहा है। यह उल्लेखनीय चमत्कारों का समय है। 6 महीने पहले जब अध्यक्ष मानसन ने मिशन सेवा पर जाने वाले युवकों और युवतियों की आयु में परिवर्तन की घोषणा की, असंख्य आत्मिक प्रभाव हुआ था। विश्वास ने संदेह को दूर किया और युवक और युवतियां आगे आए। सम्मेलन के बाद गुरुवार को प्रथम अध्यक्षता की प्रचार नियुक्तियों की संस्तुति देने के लिए मुझे नियुक्त किया गया था। मैं 18 वर्ष के युवकों और 19 वर्ष की युवतियों के आवेदनों को देखकर हैरान था, जिन्होंने अपनी योजना समायोजित किया, डॉक्टर से मिले, अपने स्टेक धर्माध्यक्षों और स्टेक अध्यक्षों से साक्षात्कार किए और अपने आवेदन भेजे थे, सब केवल 5 दिनों में। अब हजारों और उनके साथ शामिल हो गए हैं। ये एक चमत्कार है। हम समस्त विश्व के देशों में बढ़ती जा रही अपनी प्रचारक बहनों और सेवा करने के लिए तैयार दंपतियों के स्फूर्तिदायक विश्वास के लिए आभारी हैं। 58 और मिशन की घोषणा की गई है और प्रोवो में हमारे उमड़ते प्रचार प्रशिक्षण केंद्र को आश्चर्यजनक रूप से मेक्सिको शहर में एक नया साथी मिल गया है। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने कहा था, हम उद्धारकर्ता के आदेश को अधिक गंभीरता से लेते हैं। तुम जाओ और सभी राष्ट्रों में शिक्षा दो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। यह कार्य निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, जीवन को बदलते आशीषित करते हुए। संपूर्ण विश्व की कोई ताकत परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकती। हम प्रभु के चमत्कारों को देख रहे हैं जबकि उसका सुसमाचार संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। भाइयों और बहनों, जिस निश्चितता से प्रभु ने अधिक प्रचारकों को सेवा करने के लिए प्रेरित किया है, उतनी ही निश्चितता से वह अपने प्रचारकों को स्वीकार करने के लिए भले और ईमानदार लोगों के मनों को जागृत कर रहा है और दिलों को खोल रहा है। आप पहले से इन्हें जानते हैं या इन्हें जान जाएंगे। वे आपके परिवार में हैं और आपके आस पड़ोस में रहते हैं। वे गली में आपके सामने से गुजरते हैं, स्कूल में आपके साथ बैठते हैं और आपके ऑनलाइन जुड़ते हैं। आप भी इस खुले चमत्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप कोर्ट पर प्रचारक बिल्ले के साथ पूरे समय के प्रचारक नहीं हैं, तो अपने दिलों पर लिख लो, जैसा पॉल कहता है, स्याही से नहीं बल्कि सजीव परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है। और वापस आए प्रचारकों, अपने पुराने प्रचारक बिल्लों को खोजो। इसे पहनो नहीं, लेकिन ऐसे जगह रखो जहां तुम इसे देख सको। प्रभु अपने हाथों के औजार बनाने के लिए आपको इसकी जरूरत है। आपको इस चमत्कार में योगदान देना है। सुसमाचार को कैसे बांटना है के विषय में गिरजे का प्रत्येक धर्मी सदस्य सोचता है। कुछ समाचार को स्वाभाविक रूप से बांटते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ संघर्ष करते हैं और सोचते हैं बेहतर कैसे करें। इस अपराध बोध पर विचार करते हुए हम कभी कभी महसूस करते हैं और जाकर मिलेगा। सुसमाचार बांटने की हमारी इच्छा इन सबों को घुटनों के बल करती है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हमें प्रभु की जरूरत है। अध्यक्ष मॉन्सन ने कहा था कि हमें उन क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जहां हमारा प्रभाव सीमित है और जहां सुसमाचार स्वतंत्र रूप से बांटने की अनुमति नहीं है। जब हम गंभीरता और एक होकर स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे महत्वपूर्ण द्वार खोलना जारी रखता है। हमें सुसमाचार बांटने और अपने स्वयं के अवसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेरित पौलुस ने कहा, तुम सब जिसमें विश्वास रखते हो उसके विषय में यदि कोई जाकर पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो, उस आशा के लिए जो आप में है। आज के संसार की अर्थव्यवस्था और हलचल के कारण इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कम लोग अपने आराधना स्थलों को जा रहे हैं। यद्यपि बहुत से परमेश्वर के निकट आना और जीवन के उद्देश्य को अच्छे से समझना चाहते हैं, उनके पास अनुत्तरित प्रश्न है। बहुत से हृदय सच्चाई ग्रहण करने के लिए खुले हुए हैं, लेकिन जैसा कि भविष्यवक्ता एमस ने व्याख्या दी थी, वे लोग यहोवा के संदेश के लिए आगे बढ़ेंगे, पीछे हटेंगे, किंतु वे उसे पाएंगे नहीं। आप उनके प्रश्नों को उत्तर देने में मदद कर सकते हो। अपनी प्रतिदिन की बातचीत में आप मसीह में उसके विश्वास को बढ़ा सकते हो। उद्धारकर्ता ने कहा था, अपने प्रकाश को ऊंचा करो जिससे कि वह तुम्हारे सारे संसार को प्रकाशित कर सके। देखो, मैं वही प्रकाश हूँ जिसे तुम पकड़े रहोगे। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ, जब आप यह जानने के लिए प्रार्थना करते हो कि किससे बात करनी है, तो नाम और चेहरे आपके मन में आएंगे। आपको बोलने के लिए शब्द उसी क्षण दिए जाएंगे जब आपको इनकी जरूरत होगी। आपके लिए अवसर खोल दिए जाएंगे। विश्वास संदेह को दूर करेगा और प्रभु आपके स्वयं के चमत्कारों से आशीषित करेगा। उद्धारकर्ता ने हमें सिखाया कैसे सुसमाचार बांटना है। मुझे एंड्रयास की कहानी पसंद है जिसने पूछा था, गुरु तेरा निवास कहाँ है? यीशु जहाँ रहता था उस स्थान को बताकर जवाब दे सकता था। इसके स्थान पर उसने एंड्रयास से कहा, आओ और देखो। मैं सोचता हूँ कि उद्धारकर्ता कहना चाहता था, आओ और न केवल देखो मैं कहाँ रहता हूँ बल्कि कैसे रहता हूँ। आओ देखो मैं कौन हूँ, आओ और आत्मा को महसूस करो। उस दिन के विषय में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम अवश्य जानते हैं कि जब एंड्रयास ने अपने भाई शमौन को पा लिया तो उसने घोषणा की थी, हमें मसीह मिल गया है। वे जो हमारी बातचीत में रुचि दिखाते हैं, हम उन्हें निमंत्रण देकर उद्धारकर्ता के उदाहरण आओ और देखो का अनुसरण कर सकते हैं। कुछ हमारे निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं आओ और देखो का निमंत्रण स्वीकार करने से पहले किसी को बहुत बार निमंत्रण देना पड़ता है। आओ और हम उनके बारे में विचार करें कि कभी हमारे साथ थे लेकिन हम उनमें बहुत कम देखते हैं। एक फिर उन्हें वापस आने का और देखने का निमंत्रण दें। हम प्रत्येक व्यक्ति के चुनाव और समय का आदर करते हैं। प्रभु ने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए चुनाव करने दो। किसी व्यक्ति की रुचि में कमी हमारी मित्रता के बंधनों और प्रेम को कम करने के लिए जरूरत नहीं है। जब आप दूसरों को आओ और देखो का निमंत्रण देते हो, चाहे निमंत्रण स्वीकार किया जाए या नहीं, आप प्रभु के समर्थन को महसूस करेंगे और उस समर्थन के साथ अपने विश्वास को बांटने के लिए फिर से एक अतिरिक्त भरोसा पाएंगे। जो इंटरनेट और मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, उनके लिए दूसरों को आओ और देखो का निमंत्रण देने के लिए नए तरीके हैं। आओ हम अपने विश्वास को ऑनलाइन बांटना अपने प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बनाएं। LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, ये सब ऐसे अवसर उपलब्ध कराते हैं। सुसमाचार बांटने के लिए बोस्टन में युवा सदस्यों ने बहुत से ब्लॉग शुरू किए हैं। जो गिरजे में शामिल हुए उन्होंने अपने सुसमाचार शिक्षा पहले ऑनलाइन से आरंभ की और इसके बाद प्रचारकों के साथ चर्चा की। इस अनुभव ने युवाओं को व्यक्तिगत तौर पर सुसमाचार के बारे में बात करने का अधिक विश्वास पाने में मदद की। उनमें से एक युवा ने कहा है, यह प्रचारक कार्य नहीं है, यह प्रचारक आनंद है। हम इसमें एक साथ हैं। साथ ही वार्ड सदस्यों प्रचारकों के साथ हम योजना बनाएं और प्रार्थना करें और एक दूसरे की मदद करें। पूरे समय के प्रचारकों को अपने विचार और प्रार्थनाओं में याद करें। अपने परिवार और मित्रों के लिए उन पर भरोसा रखें। प्रभु पर भरोसा रखता है और उन्हें सिखाने और शिक्षित करने के लिए नियुक्त किया है जो उसकी खोज करते हैं। मोजाम्बिक मापुतो मिशन के अध्यक्ष पॉलो क्रेटली ने अनुभव को बांटा था। मोजाम्बिक में दंपतियों के लिए एक साथ रहना बिना विवाह के आम बात है, क्योंकि अफ्रीकी परंपरा के अनुसार विवाह के लिए महंगा दहेज चाहिए और अधिकांश संपत्ति दहेज का खर्च नहीं उठा सकते। सदस्यों और प्रचारकों ने मदद करने के लिए सोचा और प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर था कि वे यौन शुद्धता के नियम और विवाह और आनंद परिवार के महत्व पर जोर दें और दंपति का पश्चाताप करने और विधिवत विवाह में मदद करते समय वे उस सुख के विषय में सिखाएंगे जो केवल यीशु मसीह का अनुसरण करने से ही मिलता है। यह मोजाम्बिक में दो अलग शहरों के दंपति की फोटो है। शुक्रवार को विवाह हुआ था, उन्होंने अपने बड़े बच्चों के साथ शनिवार को बपतिस्मा लिया था। मित्रों परिवारों को आने और देखने का निमंत्रण दिया गया था और सैकड़ों आए और देखा था। बपतिस्मे के साथ एक बहन ने कहा था, हमें चुनाव करना था कि अपने पूर्वजों की परंपराओं का अनुसरण करें या यीशु मसीह का अनुसरण करें। हमने मसीह का अनुसरण करना चुना। हो सकता है आप मोजाम्बिक में न रहते हों, लेकिन अपने मार्ग में, अपनी स्वयं की संस्कृति में, आप यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार को बांट सकते हैं। स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें, यह उसका पवित्र काम है। आपको कार्य करने का मार्गदर्शन मिलेगा। वह द्वार खोलेगा, मार्ग के रोड़ों को हटाएगा और बाधाओं को पार करने में आपकी मदद करेगा। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि यीशु मसीह हमारे प्रभु उद्धारकर्ता को उसके राज्य का निर्माण करने में हमारी मदद के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया जाएगा। मैं गवाही देता हूँ कि प्रभु की आवाज पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुँचेगी, ताकि जो सुनना चाहेंगे इसे सुनेंगे। यह एक चमत्कार है यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
A young father recently learned of the past.
एक युवा पिता को हाल ही में पता चला कि उसकी दूसरी कक्षा की अद्भुत शिक्षक गुजर गई है। उनकी याद में वह लिखता है, मुझे याद है कि सारे एहसासों और अनुभवों में से तसल्ली का एहसास मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा प्रचलित है। किसी शब्द का गलत और हर फेर उच्चारण ठीक था। उन्होंने मुझे शब्द व्याकरण और गणित सिखाया था, परंतु इससे भी अधिक जरूरी उन्होंने सिखाया था बच्चे के समान प्यार करना, एक बच्चे के रूप में मुझे प्यार करना सिखाना। उनकी कक्षा में किसी शब्द का गलत और हेर फेर उच्चारण ठीक था, हम इस पर काम करेंगे, वे कहती थी। ये ठीक है, छलकेगा या फटेगा या जलेगा, हम इसे सुलझाएंगे और हम इसे साफ करेंगे, वे जवाब देती थी। यहाँ कोशिश करना ठीक है, खींचना ठीक है, सपना देखना ठीक है और उन आनंदों का मजा लेना अविशेष चीजों से आता है। एक महान प्रभाव जो एक व्यक्ति संसार में ला सकता है, वो एक बच्चे को प्रभावित करना है। बच्चों का विश्वास और आत्मयोग्यता उनके शुरू के जीवन में बहुत तेज होती है। बच्चों के लिए हमारी शब्द उसकी प्रोत्साहन और आशा की आवाज हो सकती है। हर कोई जो मेरी आवाज में है उसके पास शक्ति है बच्चे के भरोसे को उसमें बढ़ाने की, और बच्चे का विश्वास स्वर्ग के पिता और यीशु मसीह में बढ़ाने की शब्दों के द्वारा जिसे वे बोलते हैं। इलामन अध्याय 5 हम पढ़ते हैं, और अब मेरे बेटों स्मरण रखो कि तुम्हें अपने उद्धारकर्ता जो कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है उसके चट्टान पर अपनी नींव को बनाना है। इन शब्दों को इलामन ने अपने बेटे को सिखाया था, और हम पढ़ते हैं, और उन्होंने उनकी बातों को स्मरण रखा और परमेश्वर की आज्ञाओं परमेश्वर की वाणी को प्रचार करने के लिए संपन्न देश से आरंभ करने के लिए आगे बढ़े। यहाँ तक कि जब इलामन के बेटे को पीड़ित किया गया और बंदी गृह में डाला गया, उन शब्दों को जिसे उन्होंने सुना था कभी उन्हें विफल न होने दिया था। उनकी रक्षा आग के खंभे के घेरे से की गई थी। तब एक स्वर आया कहते हुए उनकी बंदीग्रहता को, तुम पश्चाताप करो और मेरे उन सेवकों को नष्ट करने का प्रयत्न मत करो। वह आवाज मेघ गर्जन की नहीं थी और ना ही कोई कोलाहलपूर्ण आवाज है, परंतु एक व्यवस्थित अति मृद लतापूर्ण वाणी है, मानो मंद मंद आ रही हो, जो अंतरात्मा तक पहुंच रही थी। हम स्वर्ग के स्वर से सीखते हैं। यह जोर से धमकाने वाला या नीचा दिखाने वाला नहीं था। यह एक शान संपूर्ण धीमा स्वर दृढ़ता से मार्ग दिखाता हुआ जो कि आशा देता था। हम बात करते हैं और प्रोत्साहित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको बढ़ावा देने वाले शब्द उनके विश्वास को बल प्रदान करते हैं कि वे स्वर्ग के पिता के पास वापस जाने की राह पर रहें। वे यहाँ पृथ्वी पर सुनने को तैयार रहे। एक बच्चे को सुनने का उदाहरण दिया गया। स्टोर लोगों से भरा हुआ था जब वह सबों को प्रत्यक्ष हुआ कि एक माँ परेशान थी क्योंकि उसने अपना छोटा सा बेटा खो दिया था। पहले थी कॉर्नर, वे कहती थी कि जिसे तेजी से वे स्टोर में चल रही थी। जैसे समय बीतता गया उसकी आवाज तेज और उग्र होती जा रही थी। जल्द ही स्टोर के सुरक्षा कर्मी और शीघ्र ही स्टोर में सभी बच्चों को ढूंढने के लिए शामिल हो गए। घंटों बाद कोई सफलता उसे खोजने पर नहीं मिली। कॉर्नर की माँ समझदारी से और अधिक उग्र होकर जल्दी जल्दी से बार बार उसका नाम लेकर चिल्लाने लगी थी। एक संरक्षक शांत प्रार्थना के बाद सोचा कि कॉर्नर हो ना हो स्टोर के अंदर ही है और शायद डर गया है, जैसे कि चिल्ला कर लिया। खोज में शामिल उसने एक दूसरी महिला से ये बात कही और उन्होंने तुरंत योजना बनाई। एक साथ कपड़ों की मेजों के बीच से चलते हुए शब्दों को दोहराया, कॉर्नर, यदि तुम हमारी आवाज सुन सकते हो, बोलो, मैं यहाँ हूँ। जैसे वे स्टोर के पीछे की ओर धीरे से चलते और बातों को दोहराते हुए गए, सच में उन्होंने एक धीमी स्वर को कहते हुए सुना, मैं यहाँ हूँ। कॉर्नर कपड़ों की मेजों के बीच की थान में छुपा था। यहाँ एक संपूर्ण मध्य स्वर था जिसने कॉर्नर को जवाब देने, बच्चे के हृदय से बात करने के लिए हम बच्चों की आवश्यकताओं को जानना चाहिए। यदि हम उन जरूरतों को जानने के लिए प्रार्थना करें, हमारे कहे शब्द शायद उनके हृदयों तक शक्ति से पहुंचे। हमारा प्रयत्न सफल होता है जब हम पवित्र आत्मा के निर्देशन को खोजते हैं। प्रभु ने कहा था, विचारों को बोलो जिसे मैंने तुम्हारे हृदयों में डाला है और यह तुम्हें तुम्हारी जरूरत के समय दिया जाएगा, हाँ उसी क्षण में कि तुम्हें क्या कहना है। दुर्भाग्यवश यह संसार व्याकुल करता है, प्रोत्साहन के शब्दों को सुनने से बहुत से बच्चों को रोकता है जो कि उनके स्वयं के विचारों को आकृति दे सकती है। डॉक्टर नील हेल्फन, एक चिकित्सक जो UCLA सेंटर का निर्देशन स्वास्थ्य बच्चों परिवारों और समाजों के लिए संधम पेरेंटल बिनाइन निग्लेक्ट को करते हैं, एक अध्ययन में देखा 18 महीने का बच्चा और उसके अभिभावक को। उनका बेटा खुश, सक्रिय और व्यस्त, आनंदित होता और पिज्जा अपने माता पिता के साथ खाता हुआ लग रहा था। रात्रि भोजन की समाप्ति पर माँ पिता को ध्यान रखने को सौंपकर जल्दी जल्दी काम करने चली गई। पिता फोन के संदेश पढ़ने लगा जबकि बच्चा पिज्जा के टुकड़े फेंक कर उसका ध्यान अपनी ओर करने का प्रयत्न करने लगा। पिता ने अपने आप को रीएंगेज किया और अपने बच्चे की ओर लगकर और उसके साथ खेलना शुरू किया। तभी इसके बाद वो और बच्चा उसके फोन पर वीडियो देखने लगा और उसकी पत्नी के लौटने तक। इन दोनों कहानियों में डॉक्टर हेल्फो ने देखा बच्चे की फीकी भीतरी ज्योति, एक सबक अभिभावक और बच्चे के बीच का तालमेल को रखने का। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे हमारे बच्चों की जरूरतों को जानने शायद अक्सर तकनीकियों से टूट जाते हैं। अमूल्य मौकों का क्षणों से मिलना और बात करना भूल जाते हैं जब हम व्याकुलताओं से घिरे होते हैं। क्यों हम प्रतिदिन एक समय चुनने तकनीकी को तोड़कर और एक दूसरे से जुड़े? जब आप ऐसा करते हैं आपका घर पहले से शान दिखाई देगा। आप भी शायद गुम हो जाएंगे कि क्या करना और कहना है। तब जैसे आप पूरी तरह से अपने बच्चों पर ध्यान देंगे और बातचीत शुरू होगी और आप एक दूसरे को सुनकर आनंदित होंगे। हम भी अपने बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं शब्दों के द्वारा। हम उन्हें लिख कर देते हैं। नफी ने लिखा, हम परिश्रम करके इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि हम अपनी संतानों और मसीह में विश्वास करा सकें और परमेश्वर के साथ संधि कर लें। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने जे हेस का अनुभव बांटा, एक हवाई आदमी जिसे उत्तरी वियतनाम में सन 1960 में गोला मारकर गिराया गया था। 2 सालों तक उसके परिवार का कोई अनुमान नहीं था कि वह जिंदा है या मर गया। हनोई में बंदीकृता ने परिणाम स्वरूप उसे घर को लिखने की अनुमति दी, परंतु यहां तक उसका संदेश 25 से कम के शब्दों में लिखने को। अध्यक्ष मॉन्सन ने पूछा, आप और मैं अपने परिवार वालों से क्या कहेंगे यदि हम ऐसी परिस्थिति में हो, उन्हें 2 सालों से देखे बिना और जाने बिना कि उन्हें फिर कभी देख भी पाएंगे या नहीं, और सिर्फ 25 शब्द? उसके परिवार को कुछ ऐसा भेजना कि वह पहचान जाए कि कहां से आया है और उन्हें अमूल्य सलाह देने का। भाई हेस लिखता है, यह चीजें महत्वपूर्ण है, यह चीजें महत्वपूर्ण है, मंदिर, विवाह, मिशन, कॉलेज, आगे बढ़ो, उद्देश्य बनाओ, इतिहास लिखो, साल में 2 बार तस्वीर लो। आप अपने बच्चों को क्या शब्द लिखेंगे यदि आपके पास 25 शब्द या कम हो? युवा पिता जिसके बारे में मैंने पहले बोला था, जिसने अपनी यादों को दूसरी कक्षा की शिक्षा के लिए लिखा था, अब वे एक सुंदर बेटी को बढ़ा रहा है। उसने स्वर्ग की सच्चाई को महसूस किया जो उसके भीतर थी। जैसे वे बड़ी हो रही है, उसका भविष्य क्या होगा? वो ऐसा क्या कहेगा जो कि उसके हृदय की गहराई में जाए? कौन से शब्द उसे प्रोत्साहित करेंगे, ऊपर उठाएंगे और रास्ते पर रहने में मदद करेंगे? क्या वह भिन्न होगा यदि वह समय निकालकर फुसफुसाए, तुम परमेश्वर के बच्चे हो? क्या वह किसी दिन याद करेगी कि उसका पिता अक्सर ये शब्द बोलता था, मैं तुम्हारी हर बात से प्रेम करता हूँ? क्या ये नहीं कि हमारे स्वर्ग के पिता अपने पुत्र और हम सबों से कहते हैं जब उसने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, और तब जोड़ते हैं, जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शब्दों को हम बोलकर और अपने बच्चों के लिए लिखते सकते हैं कि हमारे स्वर्ग के पिता के प्रेम का अक्स होता है जो उसका अपने पुत्र यीशु मसीह और हमारे लिए था। और तब हमें रुक कर सुनना चाहिए। बच्चे के लिए वापसी की बोलने की क्षमता महान और उद्भुत बातें हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, आमीन।
The choir and congregation will now stand.
अब गायक मंडली और सभा खड़े होकर गाइड अस ओ दाओ ग्रेट यहोवा गाएगी। गाने के पश्चात हम 70 की अध्यक्षता के एल एल्डर विटनी क्लिंटन को सुनेंगे। उसके बाद पश्चात 12 प्रेतों की परिषद के एल्डर एल टॉम पेरी बोलेंगे। फिर गायक मंडली वेयर लव इज गाएगी।
This is the 183rd annual General Conference.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर का 183वीं वार्षिक जनरल सम्मेलन है।
We are. One evening several years ago, my wife and I were visiting.
कई साल पहले एक शाम मेरी पत्नी और मैं हमारे एक बेटे और उसकी पत्नी और बच्चों के साथ भोजन पर उसके घर गए थे. ये छोटे बच्चों के परिवार के लिए एक आम अवसर था जहां बहुत शोरगुल और मौज मस्ती थी. भोजन के तुरंत बाद हमारी चार साल की पोती आना और मैं मेज के पास ही बैठे हुए थे. जब उसने महसूस किया कि मेरा ध्यान उस पर है, वह खड़ी हुई और मेरी ओर देखा. जब वह निश्चित हो गई कि मैं उसी को देख रहा हूँ, उसने दृढ़ता से मुझे आदेश दिया, देखो और सीखो. फिर उसने मुझे अपना डांस दिखाया और एक गीत सुनाया. आना का निर्देश देखो और सीखो, बच्ची के मुंह से ये ज्ञान की बात थी. हम देखकर और फिर जो देखते और महसूस करते हैं उस पर विचार करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. इसी सिलसिले में मैं कुछ सिद्धांतों को बांटना चाहूंगा जो मैंने शानदार निष्ठावान विवाहों के अवलोकन करने से देखा और सीखा है. ये सिद्धांत मजबूत संतुष्ट विवाह का निर्माण करते हैं जो स्वर्गीय सिद्धांतों के साथ मेल खाते हैं. मैं आपको मेरे साथ देखने और सीखने का निमंत्रण देता हूँ. मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा सुखी विवाह में पति पत्नी दोनों अपने संबंधों को एक ऐसा मोती मानते हैं जिसकी कीमत नहीं आकी जा सकती, एक असीम खजाना समझते हैं. वे दोनों अपने माता पिता को छोड़ते और मिलकर एक वैवाहिक जीवन का निर्माण करते हैं जो अनंत काल तक संपन्न होता जाएगा. वे दिव्य रूप से नियुक्त मार्ग को जानते हैं. वे जानते हैं कि कोई भी अन्य प्रकार का संबंध इससे अधिक खुशी नहीं दे सकता है, इससे अधिक भलाई उत्पन्न नहीं कर सकता है, या इससे अधिक व्यक्तिगत शुद्धता नहीं ला सकता है. देखो और सीखो, उत्तम वैवाहिक साथी अपने विवाह को अनमोल समझते हैं. दूसरा है विश्वास. सफल विवाह प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और उसकी शिक्षाओं के प्रति निष्ठा की बुनियाद पर बने होते हैं. मैंने देखा है कि वे दंपति जिन्होंने अपने विवाह को बहुमूल्य बनाया है, विश्वास के आदर्शों का पालन करते हैं. वे प्रत्येक सप्ताह प्रभु भोज और अन्य सभाओं में जाते, पारिवारिक घरेलू संध्या करते, व्यक्तिगत रूप से और मिलकर प्रार्थना और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते और ईमानदारी से दशमांश देते हैं. आज्ञाकारी और अच्छे होने की उनकी एक आसमान लालसा होती है. उन्हें आज्ञाओं को बफे नहीं समझना चाहिए जिसमें से वे अपनी पसंद और बहुत आकर्षक चीज को चुन सकते हैं. विश्वास उन सभी गुणों की बुनियाद है जो विवाह को मजबूती देते हैं. विश्वास मजबूत करने से विवाह मजबूत होता है. जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं तो विश्वास विकसित होता है और उसी प्रकार विवाह में मेल मिलाप बल और आनंद विकसित होता है. इस प्रकार आज्ञाओं का पालन करना मजबूत विवाह स्थापित करने का मूल सिद्धांत है. देखो और सीखो, यीशु मसीह में विश्वास सुखी अनंत विवाह की बुनियाद है. तीसरा है पश्चाताप. मैंने सीखा है कि सुखी विवाह पश्चाताप के उपहार पर निर्भर होते हैं. प्रत्येक अच्छे वैवाहिक संबंधों में पश्चाताप एक जरूरी हिस्सा है. जीवन साथी जो निरंतर ईमानदार आत्म परीक्षण करते और अपने विवाह में सुधार करने के लिए तुरंत पश्चाताप करने का आवश्यक कदम उठाते हैं, वे अपने विवाह में एक चंगाई देने वाले बाम को महसूस करते हैं. पश्चाताप मेल मिलाप और शांति को पुनः स्थापित करने और बनाए रखने में मदद करता है. विनम्रता पश्चाताप के लिए आवश्यक है. विनम्रता निस्वार्थ होती है, ना कि स्वार्थी. ये अपने तरीके या आचरण की श्रेष्ठता का दावा नहीं करती. इसके स्थान पर विनम्रता समझने के लिए कोमलता से जवाब देती और दया पूर्वक सुनती है, कड़वे शब्दों को नहीं बोलती. विनम्रता जानती है कि कोई भी किसी को नहीं बदल जा सकता, लेकिन विश्वास प्रयास और परमेश्वर की मदद से हमारे अपने हृदय का महान परिवर्तन हो सकता है. हृदय के महान परिवर्तन और अनुभव होने पर हम दूसरे विशेषकर अपने जीवन साथी के साथ नम्रता से व्यवहार करते हैं. पति और पत्नी दोनों के लिए विनम्रता का अर्थ प्रत्येक निर्णय से दूसरे को पहले रखकर आशीष देने, मदद करने और एक दूसरे को ऊपर उठाने का प्रयत्न करना है. देखो और सीखो, पश्चाताप और विनम्रता सुखी विवाह का निर्माण करते हैं. चौथा है आदर. मैंने देखा है कि शानदार सुखी विवाह में पति और पत्नी एक दूसरे को एक समान साथी समझते हैं। किसी भी स्थान या समय की वे प्रथाएं जिनमें पति पत्नी पर हावी होते या उन्हें अपने से कम समझते हैं, दिव्य व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता है और इन्हें नहीं सिद्धांतों और आदर्शों को व्यवहार द्वारा बदला जाना चाहिए। कामयाब विवाह में पति और पत्नी एकमत से निर्णय लेते हैं जिसमें दोनों पूरी तरह से भाग लेते हैं और दोनों की एक समान बोलने और राय देने का अधिकार होता है। वे सबसे ध्यान अधिक कर और अपनी साझा जिम्मेदारियों के लिए एक दूसरे मदद करने में लगाते हैं। इनके विवाह सहयोग पर आधारित होते हैं और समझौते पर नहीं। इनका भोजन का समय और उसके बाद परिवार का समय दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय बन जाता और इसके लिए उत्तम प्रयास किए जाते हैं। घर के काम में मदद के लिए वे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को बंद करते और व्यक्तिगत मनोरंजन का त्याग करते हैं। जहां तक संभव होता है वे अपने बच्चों के साथ हर रात पढ़ते और छोटे बच्चों को बिस्तर पर सुलाने में दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके बाद वे बिस्तर पर जाते हैं जैसा उनके काम और परिस्थितियाँ अनुमति देती है। पति और पत्नी वे कंधे से कंधा मिलाकर अति महत्वपूर्ण काम अपने स्वयं के घर के कामों को करते हैं। जहाँ आदर होता है वहाँ पारदर्शिता भी होती है जो कि सुखी जीवन का मुख्य तत्व है। आपसी आदर और पारदर्शिता पर आधारित विवाह में उपयुक्त बातें छिपाई नहीं जाती। पति और पत्नी मिलकर सारे आर्थिक निर्णय लेते हैं और दोनों को हर जानकारी जानने का हक होता है। वफादारी आदर का एक अन्य रूप है। भविष्यवक्ता सिखाते हैं कि सफल वैवाहिक साथी एक दूसरे के प्रति अत्यधिक वफादार होते हैं। वे अपने सामाजिक मीडिया का उपयोग पूरी योग्यता से करते हैं। वे स्वयं के लिए कोई अनुचित इंटरनेट अनुभव नहीं करते। वे मुक्त रूप से सामाजिक नेटवर्क पासवर्ड एक दूसरे से साझा करते हैं। वे किसी की प्रोफाइल में ताक झांक नहीं करते जिससे किसी भी तरह से उनके जीवन साथी के पवित्र भरोसे के साथ धोखा हो। वे कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहते या करते जो किसी भी तरह से अनुचित हो। देखो और सीखो। उत्तम विवाह पूर्ण रूप से आदर योग्य, पारदर्शी और वफादार होते हैं। पांचवा है प्रेम। मैंने देखा है सबसे सुखी विवाह के आसपास सबसे उत्तम आज्ञा प्रेम से मिलकर रहो के प्रति आज्ञाकारिता का प्रकाश जगमगाता है। पति से बोलते हुए प्रभु ने आदेश दिया है, तुम अपने पति से अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करना और उसे छोड़ किसी अन्य के साथ ना जुड़ना। गिरजे की पुस्तिका सिखाती है शब्द जुड़ने का अर्थ है किसी के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा रखना और विश्वासी बने रहना। विवाहित दंपति परमेश्वर एक दूसरे के साथ सेवा और प्रेम करके और अनुबंधों का पालन करके पूर्ण ईमानदारी से जुड़े रहते हैं। पति और पत्नी दोनों अपना पिछला जीवन पीछे छोड़ देते हैं और अपने विवाह को स्थापित करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। वे किसी अन्य व्यक्ति या रुचि को इससे अधिक महत्व नहीं करते। देखो और सीखो। सफल वैवाहिक दंपति पूर्ण निष्ठा से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कुछ होते हैं जिनके विवाह उतने सुखी नहीं होते जितना वे चाहते हैं या जिन्होंने विवाह नहीं किया है। तलाकशुदा, अकेले माता पिता या किसी भी कारण से विवाह करने की स्थिति में नहीं है। इस तरह की परिस्थितियां चुनौती भरी और हृदय विदारक होती हैं। आपसे जो इन परिस्थितियों में है दृढ़ रहने के लिए जो कुछ आपके बस में है उन सब को खुशी खुशी करते हो उसमें परमेश्वर आपको भरपूर आशीष देगा। योग्य जीवन साथी बनने की तैयारी करते हुए अनंत विवाह बनाने के आदर्श को पाने का प्रयास करें। आज्ञाओं का पालन करें और अपने प्रति प्रभु और उसके परिपूर्ण प्रेम पर भरोसा रखें। एक दिन विवाह के संबंध में वादा की गई प्रत्येक आशीष आपको मिलेगी। मॉर्मन की पुस्तक की मधुरतम आयतों में से एक सरलता से बताती है और उनका विवाह हुआ और वे विवाह में दिए गए और उन अनेकों प्रतिज्ञाओं के अनुसार आशीषित किए गए जो प्रभु में उनसे साथ बनाई थी। प्रभु की प्रतिज्ञाओं उन सब के लिए हैं जो जीवन के उस आदर्श का अनुसरण करते हैं जो सुखी और पवित्र विवाहिक संबंधों का निर्माण करती हैं। ऐसी आशीषें यीशु मसीह के ससुमाचार को विश्वसनीय से जीने के परिणाम पूर्वक मिलती हैं। मैं अपनी शानदार पत्नी कैथी का आभारी हूँ जो मेरे जीवन का प्यार है। विवाह ईश्वर का उपहार है। विवाह की गुणवत्ता उसके लिए हमारा उपहार है। मैं हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता की उस अद्भुत योजना की गवाही देता हूँ जो अनंत शानदार विवाह के अवसर उपलब्ध कराती है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
I received a special gift last Christmas.
पिछले बड़े दिन पर मुझे एक विशेष उपहार मिला था जो बहुत सी पुरानी यादों को साधता है। इनमें मेरी भतीजी ने मुझे दिया था। यह उन चीजों में से एक है जिन्हें मैंने विवाह के बाद अपने पुराने पारिवारिक घर में छोड़ आया था। यह उपहार एक छोटी सी भूरी पुस्तक है जो मेरे हाथ में है। यह पुस्तक जिसमें अंतिम दिनों के संतों सेवकारियों को दिया गया था जो द्वितीय विश्वयुद्ध दौरान सशस्त्र में गए थे। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पुस्तक को अध्यक्ष हीबर जे ग्रांट और उनके सलाहकार जे रूबन क्लार्क जूनियर और डेविडो मकेन के उपहार के रूप में देखा था। यह पुस्तक के अग्रभाग में एक पत्र परमेश्वर के इन तीनों भविष्यवक्ताओं ने लिखा था। सशस्त्र सेना की घटनाएं हमें प्रगति रूप से या अन्य रूप से आपके साथ निरंतर संपर्क बनाने की अनुमति नहीं देती। हमारे पास सबसे अच्छा रास्ता है आपके हाथों में आधुनिक प्रकटीकरण और सुसमाचार सिद्धांतों की ऐसी व्याख्या देना जो आपके लिए नवीन और आशा और विश्वास इसी प्रकार दिलासा सांत्वना और आत्मा की शांति लाएगी आप चाहे कहीं भी हों। आज हम अपने आप को एक अन्य प्रकार के विश्व युद्ध में पाते हैं। इस समय यह शस्त्रों का वार नहीं है। यह विचार शब्दों कामों के साथ है। यह पाप के साथ युद्ध है। आज की हमें आज्ञाओं का पालन करने के दिलाए जाने की सबसे अधिक जरूरत है। धर्मनिरपेक्षता आदर्श बनती जा रही है और प्रथाएं उन बातों से मतभेद रखती हैं जिन्हें यीशु स्वयं प्रभु द्वारा अपने बच्चों के लिए व्यक्तिगत स्थापित किया था। यह छोटी पूरी पुस्तक में प्रथम अध्यक्षता के पत्र के तुरंत बाद सेना के लोगों के लिए आरंभिक टिप्पणी शीर्षक नियम का पालन करना स्वतंत्रता है। टिप्पणी सेना के नियम के साथ समानताएं बताती है जो कि उचित है। टिप्पणी बताती है इस सृष्टि में भी जहां परमेश्वर का अधिकार है वहां नियम है। सर्वव्यापी अनंत नियम जिसके साथ खास आशीषें और अपरिवर्तनशील सजाएं जुड़ी हैं। टिप्पणी के अंत में शब्द परमेश्वर के नियम पर केंद्रित हैं। यदि आप अपने प्रियजनों के पास सिर उठाकर वापस जाना चाहते हो, यदि मनुष्य बनना और बहुतायत से जीना चाहते हो तो परमेश्वर के नियम का पालन करो। ऐसा करने से आप अनमोल स्वतंत्रता जिसे बचाने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो के साथ आप एक अन्य को जोड़ सकते हो। पाप से स्वतंत्रता जिस पर दूसरे बहुत निर्भर करते हैं क्योंकि वास्तव में नियम का पालन करना स्वतंत्रता है। क्यों वाक्य नियम का पालन कर स्वतंत्रता है इस समय मुझे इतना वास्तविक लग रहा है क्योंकि क्यों यह हम सबों के लिए इतना वास्तविक लगता है। शायद इसलिए कि क्योंकि हमें अपने पृथ्वीपुर जीवन का इतिहास प्रकट किया गया है। हम जानते हैं जब हम परमेश्वर अनंत पिता के सामने समय के आरंभ में अपनी योजना प्रस्तुत की थी तो शैतान उस योजना के में फिर बदल करना चाहता था। शैतान ने कहा था वह संपूर्ण मानव जाति को बचा लेगा, एक भी प्राणी नहीं खोएगा। और शैतान का पूरा भरोसा था कि वह अपना प्रस्ताव पर कार्य कर सकता था, लेकिन उसके लिए एक अस्वीकार कीमत चुकानी थी। मनुष्य की स्वतंत्रता का नाश जो कि परमेश्वर द्वारा दिया गया उपहार था। इस उपहार के विषय में अध्यक्ष हॉरल्ड बी ली ने कहा था, जीवन के बाद स्वतंत्रता मानव जाति के लिए परमेश्वर का महानतम उपहार है। तब शैतान के लिए मनुष्य की स्वतंत्रता का उपेक्षा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। असल में यह एक महत्वपूर्ण विषय बना जिस पर स्वर्ग पर युद्ध लड़ा गया। स्वर्ग में इस युद्ध पर विजय मनुष्य की स्वतंत्रता की विजय थी। हालांकि शैतान चुप नहीं बैठा। इसकी अतिरिक्त योजना, यह योजना जिस पर वह आदम और हवा के समय से काम करता आ रहा है, पुरुष और परिस्थिति को फुसलाना था, विशेषकर यह साबित करना कि हम परमेश्वर द्वारा दिए गए स्वतंत्रता के उपहार के योग्य नहीं है। शैतान जो कर रहा है उसे करने के पास कई कारण है। उनमें से सबसे सशक्त है बदला लेने का इरादा, लेकिन वह पुरुष और स्त्री को अपने समान दुखी बनाना चाहता है। हम में से किसी को भी इसे कम नहीं आंकना चाहिए कि शैतान सफल होने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी भूमिका परमेश्वर की अनंत योजना है, सब कामों में विरोध और हमारी सुरक्षा की जांच करना। प्रत्येक चुनाव जो आप और मैं बनाते हैं, हमारी स्वतंत्रता, चाहे ये हमारी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता या आज्ञाकारी को चुनते हैं, वास्तव में स्वतंत्रता और अनंत जीवन और गुलामी और मृत्यु के बीच चुनाव करना है। मूलभूत सिद्धांत दो नफी उसके दूसरे 27 में स्पष्टता से सिखाया गया है। इसलिए मनुष्य शरीर में स्वतंत्र है और वह उन्हें सब वस्तुएं दी गई हैं जो मनुष्य को चाहिए, और वे हैं सभी मनुष्यों के महान मध्यस्थ के द्वारा स्वतंत्रता और आनंद जीवन चुनने के लिए, या शैतान की गुलामी और शैतान शक्ति के अनुसार गुलामी और मृत्यु को चुनने के लिए, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य उसके स्वयं के समान दुखी हो। कई तरह से यह संसार हमेशा युद्ध में रहा है। मैं विश्वास करता हूं जब अध्यक्षता ने मुझे छोटी सी भूरी पुस्तक भेजी, दूसरे युद्ध के विषय से अधिक बड़े युद्ध के विषय में अधिक चिंतित थे। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि वे आशा करते थे कि उसके पुस्तक शैतान और उसकी सेना के विरुद्ध उससे युद्ध पर पाप के विरुद्ध युद्ध में विश्वास का कवच बनेगी और मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में याद दिलाएगी। अपनी आपकी जांच करना, पिछली पीढ़ियों से अपनी तुलना करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा उदर्श है 10 आज्ञाएं। अधिक समाज सभ्य समाज के लिए, विशेषकर यहूदी मसीही समाज, 10 आज्ञाएं सबसे अधिक स्वीकार्य और अच्छे और बुरे की जांच करने की। मेरी समझ में 10 में से 4 आज्ञाएं आज भी उतनी ही गंभीरता से हमेशा। एक समाज के रूप में हम चोरी करना, हत्या करना, झूठ का संस्कार और निंदा करते हैं। हम आज भी विश्वास करते हैं माता के पिता के प्रति बच्चों की जिम्मेदारी है, लेकिन समाज के एक बड़े हिस्से के रूप में हम अन्य 6 आज्ञाओं को नियमित रूप से अस्वीकार करते हैं। यदि संसारिक प्राथमिकताएं सामने होती हैं, तो हम निश्चित रूप से अन्य ईश्वर को, सच्चे ईश्वर परमेश्वर के सामने से आगे कर देते हैं। हम प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जीवन शैलियों और धन की मूर्तियों बनाते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी गड़े गड़े चित्रों या उनकी वस्तुओं की भी। हम चकित होना या कसम खाने सहित हर प्रकार से पवित्र तरीकों से भगवान पवित्र परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते हैं। हम सबत के दिन का उपयोग अपने बहुत पसंदीदा खेल, अपने सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोरंजन, अपनी भारी भरकम खरीदारी और लगभग हर चीज के लिए करते हैं सिवाय उपासना के। हम गैर वैवाहिक वैवाहिक संबंधों का मौज मस्ती के रूप में लेते हैं, और लालच करना जीवन में एक बहुत आम बात हो गई है। सभी युगों के भविष्यवक्ताओं ने और व्यभिचार तो अति गंभीर आज्ञाओं के विरुद्ध हमेशा कहता हूं, इन दोनों में महत्वपूर्ण है आज्ञा है विश्वास करना है कि जीवन अपने आप में परमेश्वर का विशेष अधिकार है। हमारे भौतिक शरीर नश्वर जीवन के मंदिर परमेश्वर द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार निर्मित होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य द्वारा जीवन के किसी भी छोर पर परमेश्वर के नियमों को हटाकर अपने नियम लागू करना परिकल्पना की ऊंचाई और पाप की गहराई है।
depths of sin. The main effect of these विवाह
की पवित्रता के प्रति दृष्टिकोण की गिरावट का मुख्य असर परिवार पर पड़ता है. परिवारों की स्थिति चिंताजनक दर से बिगड़ती जा रही है. इस बिगड़ती स्थिति के कारण समाज का व्यापक नुकसान हो रहा है. मुझे एक प्रत्यक्ष कारण और प्रभाव दिखाई देते हैं. जब हम अपने वैवाहिक साथी के प्रति कटि बद्धता और निष्ठा का परित्याग करते हैं तो हम उस गोंद को निकाल देते हैं जो समाज को जोड़े रखता है. आज्ञाओं के बारे में सोचने का उपयोगी तरीका है इन्हें बुद्धिमान और स्वर्ग ज्ञाता परमेश्वर स्वर्गीय पिता की प्यार भरी सलाह के रूप में देखें. इसका उद्देश्य हमारी अनंत खुशी है और ये आज्ञाएं उसका मार्गदर्शन करती हैं जिससे उसने हमें एक वापस जाने के लिए रास्ता बताया है. हमारी अनंत खुशी का यही एकमात्र रास्ता है. हमारी अनंत खुशी के लिए घर और परिवार कितना महत्वपूर्ण है. मेरी छोटी पूरी पुस्तक के पृष्ठ 141 में लिखा है, वास्तव में हमारा स्वर्ग अनंत काल से हमारे घरों की कल्पना से थोड़ा अधिक है. परिवार और घर का सिद्धांत हाल ही में बहुत स्पष्टता से प्रबलता के साथ परिवार दुनिया के लिए एक घोषणा में दोहराया गया था. इसने परिवारों की अनंत प्रतिक्रिया को घोषित किया और फिर मंदिर उपासना के साथ इसके संबंध की घोषणा की थी. इसने घोषणा उस सिद्धांत घोषित किया कि जिस परिवारों की अनंत खुशी निर्भर है, जैसे पुरुष और स्त्री के बीच प्रजनन की पवित्र शक्तियों का उपयोग केवल विधिवत विवाहित और पत्नी के रूप में ही होना चाहिए. परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया था. नैतिक सिद्धांत के सिद्धांत शुद्ध हैं. पाप हमेशा पाप रहेगा. पापों की आज्ञाओं की अवज्ञा हमें उसकी आशीषों से वंचित करती हैं. संसार निरंतर और नाटकीय ढंग से बदलता है, लेकिन उसकी आज्ञाएं और आशीषें नहीं बदलती. ये अपरिवर्तनीय और स्थायी हैं. पुरुष और स्त्री को अपनी स्वतंत्रता का उपहार परमेश्वर से उपहार के रूप में मिलता है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता और बदले में उनकी अनंत खुशी उसके नियमों के प्रति आज्ञाकारिता से आती है. जैसे आलमा ने अपने बेटे गुमराह बेटे को करियंदन को सलाह दी थी, दुष्टता कभी भी प्रसन्नता नहीं थी. संसमाचार की परिपूर्णता की पुनर्स्थापना के इस दिन प्रभु ने उसकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी होने में प्रतिज्ञा की गई आशीष को फिर से प्रकट किया है. एक नियम है जो इस संसार की स्थापना से पहले स्वर्ग में अप्रतिनिय रूप से स्वर्ग में लागू हुआ था, जिसमें सभी आशीषें निर्दिष्ट हैं. और जब हम परमेश्वर की कोई भी आशीष प्राप्त करते हैं, ऐसा उस नियम की आज्ञा के पालन के द्वारा होता है जिस पर वह निर्दिष्ट होती है. निश्चित रूप से कोई भी सिद्धांत इतना प्रभावकारी रूप से धर्मशास्त्रों में व्यक्त नहीं किया जा सकता जितनी प्रभु की अपरिवर्तनीय आज्ञाएं व्यक्तियों के रूप में, परिवार और के रूप में और समाज के रूप में हमारी खुशी और कल्याण से इनके संबंध. नैतिकता के सिद्धांत शुद्ध हैं. प्रभु की आज्ञाओं की अनदेखी हमें उसकी आशीषों से हमेशा वंचित करती है. ये बदलते नहीं. एक ऐसे संसार में जहां समाज का नैतिक कंपस लड़खड़ाता रहता है, यीशु मसीह का पुनः स्थापित सुसमाचार कभी डगमगाता नहीं. ना ही इसके स्टेक और वार्ड, इसके परिवार, ना ही इसके सदस्य डगमगाते हैं. हमें केवल उन आज्ञाओं को पसंद करना और छांटना नहीं चाहिए जिनका पालन करना हम महत्वपूर्ण समझते हैं, बल्कि परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को स्वीकार करना है. हमें प्रभु की संगति में परिपूर्ण भरोसा और उसकी प्रेरणाओं में परिपूर्ण निष्ठा रखते हुए मजबूती और दृढ़ता से डटे रहना चाहिए. मैं हमेशा पहाड़ी पर ज्योति बने. आज्ञाओं पालन करने का एक ऐसा उदाहरण जो ना तो कभी बदलता है और ना कभी बदलेगा. ठीक जैसे इस छोटी पुस्तक ने अंतिम दिनों के संतों के सैनिकों को नैतिक रूप से युद्ध के समय दृढ़ता से खड़े रहने के लिए उत्साहित किया था, उसी तरह से हम भी इस अंतिम दिनों के युद्ध में पृथ्वी पर पृथ्वी के लिए ज्योति बने और परमेश्वर विशेषकर परमेश्वर के उन बच्चों के लिए जो प्रभु की आशीषों को खोज रहे हैं, इसकी मैं गवाही यीशु मसीह के नाम में देता हूं। आमीन।
आज सुबह सुंदर संगीत देने के लिए हम मंडप गायक मंडली के आभारी हैं। इस सत्र के हमारे अंतिम वार्ताकार भविष्यवक्ता थॉमस मॉन्सन होंगे। उनकी संदेश के अंत में गायक मंडली कम ये सीन गाएगी। फिर समापन प्रार्थना सत्र के एल्डर ओ विंसेंट हॉल करेंगे।
My beloved brothers and sisters,
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज सुबह आपके साथ होने पर मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आपके विश्वास और प्रार्थना में रुचि चाहूंगा जब मैं आपको संबोधन करता हूँ। सारे युगों से पुरुषों और महिलाओं ने इस नश्वर अस्तित्व के संबंध में ज्ञान और समझ को पाने और इसमें उनकी भूमिका और उद्देश्य को जानने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ शांति और सुख के मार्ग को भी चाहा है। ये खोज हम में से हर एक करता आया है। ये ज्ञान और समझ संपूर्ण मानव जाति को उपलब्ध है। ये उन सच्चाइयों में है जो अनंत हैं। सिद्धांत और अनुबंध के खंड एक आयत 39 में हम पढ़ते हैं, देखो प्रभु परमेश्वर है और आत्मा गवाही देती है और गवाही सच्ची है और ये सच हमेशा हमेशा के लिए कायम रहता है। ये एक कवि ने लिखा था, भले आकाश चल जाए और पृथ्वी का दरिया फट जाए, सच जीवन का सार सबका सामना करेगा। अनंत अपरिवर्तित हमेशा हमेशा के लिए। कुछ पूछेंगे, इस तरह का सच कहाँ मिलेगा और हम कैसे इसे पहचानेंगे? भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को कर्टलैंड ओहायो में दिए गए प्रकटीकरण के द्वारा प्रभु ने कहा था, सच उन बातों का ज्ञान है जैसे वे हैं और जैसी वे थी और वे आने वाले समय में वैसी रहेंगी। सच की आत्मा परमेश्वर की है और कोई भी मनुष्य उसकी आज्ञाओं का पूरी तरह पालन किए बिना इसे नहीं पा सकता। वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है और सच और ज्ञान को प्राप्त करता रहता है जब तक वह सच में गौरवान्वित रहता है और सब बातों को जानता है। कितना आनंददायक वादा है, वह जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है सच और ज्ञान को प्राप्त करता रहता है जब तक वह सच में गौरवान्वित रहता है और सब बातों को जानता है। इस प्रबुद्ध युग में जबकि सुसमाचार की पूर्णता को पुनर्स्थापित किया जा चुका, सच्चाई की खोज में आपके लिए और मेरे लिए अनजाने सागर में जाने या अनजाने मार्ग में यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। एक प्रेमी स्वर्गीय पिता ने हमारी यात्रा का मार्ग तैयार किया और अचूक मार्गदर्शन आज्ञाकारिता का उपलब्ध कराया है। सच और ज्ञान, सच का ज्ञान और हमारा महानतम सवालों के जवाब हमें तब मिलता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं। हम अपने जीवन भर आज्ञाकारिता सीखते रहते हैं। जब हम बहुत छोटे थे तब से आरंभ करके जिन पर हमारी देखभाल की जिम्मेदारी थी उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश और नियम तय किए थे। जीवन हम सबके लिए सरल हो जाएगा यदि हम ऐसे नियमों की पूरी तरह पालन करते हैं। हालांकि हमसे बहुत से लोग अनुभव के द्वारा आज्ञाकारी होने की समझ पाते हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था हर गर्मी के जुलाई से सितंबर तक मेरा परिवार यूटा प्रोवो कैनियन में विविन पार्क पर हमारे घर में रहने जाता था। कैनियन में उन चिंता मुक्त दिनों का मेरे अच्छे मित्रों में एक डैनी लार्सन था जिसके परिवार के पास भी विविन पार्क में एक घर था। हर दिन वह मैं और लड़कों के स्वर्ग में घुमा करते, धारा और नदी में मछली पकड़ना, पत्थर और दूसरे खजाने इकट्ठा करना, पैदल चलना चढ़ना और यानी प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटे प्रत्येक क्षण का आनंद लेना। एक सुबह डैनी और मैंने निर्णय लिया कि हम सब कैनियन में मित्र उस शाम कैंप फायर करेंगे। हमें केवल नजदीक के मैदान में एक जगह साफ करनी थी जहां हम सब इकट्ठा हो सकें। जून घास जिसने मैदान को ढका हुआ था सूखी और चुभन भरी थी। घास के कारण यह मैदान हमारे उद्देश्य के लिए उपयुक्त ना था, इसलिए हमने ऊंची ऊंची घास को हाथों से उखाड़ना शुरू किया। काफी बड़े क्षेत्र को गोलाकार में साफ करने की हमारी योजना थी। हमने अपनी पूरी ताकत से खींचा और जोर लगाया, लेकिन हम केवल कुछ मुट्ठी भर घास ही उखाड़ पाए थे। हम जान गए थे, और तभी मेरे 8 वर्ष के दिमाग में एक विचार आया जिसे मैं बहुत उत्तम उपाय सोचता था। मैंने डैनी से कहा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इस घास को आग लगा देते हैं। हम केवल घास को गोलाकार में आग लगा देंगे। वह तुरंत तैयार हो गया और मैं अपने घर की ओर दौड़ा और माचिस ले आया। कहीं आप में से कोई ये ना सोचे कि 8 वर्ष की इतनी कम आयु में हमें माचिस का उपयोग करने की अनुमति थी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि डैनी और मुझे दोनों को इनका उपयोग केवल बड़ों की देखरेख में करने की आज्ञा थी। हम दोनों को कई बार आग के खतरों से सावधान किया गया था। हालांकि मैं जानता था कि मेरा परिवार माचिस कहां रखता था और हमें उस मैदान को साफ करना था। बिना दोबारा सोचे मैं अपने घर की ओर दौड़ा और कुछ माचिस निकाल ली, होशियारी से कि कहीं कोई देख ना ले। मैंने तुरंत इन्हें अपनी जेब में डाल लिया। मैं डैनी की ओर वापस भागा, उत्साहित था कि मेरी जेब में हमारी समस्या का उपाय था। मुझे याद है मैं सोच रहा था कि आग केवल उतनी ही स्थान जलाएगी जितना हम चाहते थे, और उसके बाद ये जादू से अपने आप बुझ जाएगी। मैंने माचिस को पत्थर पर रगड़ा और सूखी जून घास में आग लगा दी। ये इतनी तेजी से जलने लगी मानो ये पेट्रोल में भीगी हो। पहले पहले डैनी और मैं बहुत खुश हुए जब हम घास को भस्म होते देख रहे थे, लेकिन जल्द ही हमें पता चल गया कि आग अपने आप बुझने वाली नहीं थी। हम घबरा गए क्योंकि एक कुछ नहीं कर सकते थे। धधकती हुई आग की लपटें ऊपर पहाड़ की ओर जंगली घास की तरफ जाने लगी। चीड़ के पेड़ और जो कुछ इसके रास्ते में आता खतरे में पड़ गए थे। अंततः हमारे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय मदद के लिए भागने के। जल्द ही जितने भी लोग विभिन्न पार्क में थे इधर उधर दौड़ दौड़ कर घीले टाट से लपटों को मार मार कर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। कई घंटों बाद बचे हुए अंगारों को दबा दिया गया। सालों पुराने चीड़ के पेड़ और घर आग की लपटों से बचा लिए गए थे। डैनी और मैंने उस दिन कई लेकिन महत्वपूर्ण सबक सीखे थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण था आज्ञाकारिता। जिस तरह हमारी शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और कानून हैं, उसी तरह से प्रभु ने हमारी आत्मिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश और आज्ञाएं दी हैं, ताकि आमतौर पर इस जोखिम भरे जीवन में सफलता से हमारा मार्ग निर्देशन हो सके और हम अंततः अपने स्वर्गीय पिता के पास वापस लौट पाए। सदियों पहले एक पीढ़ी से जो पशु बलिदान को की परंपरा से डूबी थी, सैमुअल ने निडरता से कहा था, सून मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेड़ों की चर्बी से उत्तम है। इस प्रबंध में प्रभु ने भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को प्रकट किया था कि उसे केवल हृदय और करने वाला मन चाहिए, और करने वाला और आज्ञाकारी इन अंतिम दिनों के स्योम प्रदेश में उत्तम पदार्थ पाएगा। सभी भविष्यवक्ता प्राचीन और वर्तमान जानते हैं कि आज्ञाकारिता हमारे उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। नफी ने कहा था, मैं जाऊंगा और वह काम करूंगा जिसकी आज्ञा प्रभु ने दी है, जबकि अन्य अपने विश्वास और आज्ञाकारिता में संकोच करते हैं। नफी ने एक बार भी उसे करने से पीछे नहीं हटा जिसे प्रभु ने उसे कहा था, और इसके कारण अनगिनत पीढ़ियां आश्रित हुई हैं। आत्मा को झंझोड़ने वाला आज्ञाकारिता का वर्णन इब्राहिम और इसहाक का है। इब्राहिम के लिए कितना कष्टदायी रहा होगा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, अपने प्रिय पुत्र को मोरिया प्रदेश ले जाकर उसकी बलि चढ़ाना। क्या हम इब्राहिम के हृदय के दुख की कल्पना कर सकते हैं जब वह उस बताए गए स्थान को जा रहा था? अवश्य ही पीड़ा ने उसके शरीर को तोड़ डाला होगा और उसके मन को आहट किया होगा जब उसने इसहाक को बांधा, वेदी पलटाया और मारने के लिए चाकू उठाया था। प्रभु ने अडिग विश्वास और पूरे भरोसे के साथ उसने परमेश्वर के आदेश को माना था। कितनी आनंददायी थी ये एक घोषणा, ये कितने आश्चर्यजनक स्वागत के साथ ये आई थी। लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इब्राहिम की जांच और परीक्षा की गई थी और उसकी इस विश्वसनीयता और आज्ञाकारिता के कारण प्रभु उसके साथ ये अद्भुत प्रतिज्ञा बनाई थी। पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यद्यपि हमारी अपनी आज्ञाकारिता को साबित करने के लिए इतनी कठिन और हृदय विदारक तरीके से जांच नहीं की जाती, फिर भी आज्ञाकारिता की सब की अपेक्षा की जाती है। अक्टूबर 1873 में भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने कहा था, आज्ञाकारिता स्वर का सर्वप्रथम नियम है। अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकली ने कहा था, अंतिम दिनों के संतों का सुख, अंतिम दिनों के संतों की शांति, अंतिम दिनों के संतों की उन्नति, अंतिम दिनों के संतों की संपन्नता और इन लोगों का अंत उद्धार और उत्कर्ष परमेश्वर के सलाहों पर आज्ञाकारिता से चलने पर निर्भर करता है। आज्ञाकारिता भविष्यवक्ताओं की विशेषता है, इसने इन्हें युगों से शक्ति और ज्ञान प्रदान किया है। हमारे लिए ये समझना आवश्यक है कि हम भी उसी शक्ति और ज्ञान में स्रोत से अधिकारी हैं। ये हम में से हर एक के आसानी से उपलब्ध हो सकता है यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। सालों से मैं उन अनगिनत लोगों को जानता हूं जो विशेष रूप से विश्वसनीय और आज्ञाकारी रहे हैं। मैं उनके द्वारा आशीषित और प्रेरित हुआ हूं। मैं ऐसे दो व्यक्तियों का वर्णन करना चाहता हूं। वाल्टर क्राउस गिरजे का वफादार सदस्य था जो अपने परमेश्वर के साथ अपने परिवार के साथ उस स्थान पर रहता था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी कहलाता था। उस समय उस क्षेत्र में स्वतंत्रता की कमी के कारण कष्टों सहने के बावजूद भाई क्राउस एक ऐसा इंसान था जो प्रभु से प्रेम और उसकी सेवा करता था। वह विश्वसनीयता और निष्ठापूर्वक उन कामों को करता था जो उसे दिए जाते थे। दूसरा व्यक्ति योहान डेंडोर्फर हंगरी का नागरिक था जो जर्मनी में गिरजे के परिवर्तित बना और उसका 1911 में 17 वर्ष की आयु में बपतिस्मा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उसने अपने आप को अपने ही देश डेब्रिसन शहर में कैदी के रूप में पाया था। हंगरी के लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। भाई वॉल्टर क्राउज, जो कि भाई डेंडोर्फर को नहीं जानता था, को उसके घर के शिक्षक और उससे नियमित भेंट करने की जिम्मेदारी दी गई। भाई क्राउस ने अपने घर के शिक्षक साथी को फोन किया और कहा, हमें भाई योहान डेंडोर्फर से भेंट करने की जिम्मेदारी दी गई है, क्या आप इस हफ्ते मेरे साथ उसे सुषमाचार संदेश देने चलोगे? और उसने ये भी कहा, भाई डेंडोर्फर हंगरी में रहता है। उसके हैरान साथी ने पूछा, हमें कब जाना है होगा? कल, भाई क्राउस ने जवाब दिया। हम घर कब वापस आएंगे? साथी ने पूछा। भाई क्राउज ने जवाब दिया, ओ, एक हफ्ते में, यदि हम वापस आए। दोनों घर के शिक्षक साथी भाई डेंडोर्फर से मिलने चले दिए। रेल और बस से उत्तर पश्चिम जर्मनी से डेब्रिसन हंगरी काफी लंबी यात्रा है। भाई डेंडोर्फर का युद्ध के पहले से कोई घर का शिक्षक नहीं था। अब जब उसने इन दो प्रभु के सेवकों को देखा, वह कृतज्ञता से भर गया कि वह उससे मिलने आए थे। पहले पहले उसने उनसे हाथ नहीं मिलाया। वह सीधा अपने कमरे में गया और एक छोटा बॉक्स लाया जिसमें उसने अपना दशमांश रखा था, जिसे उसने कई सालों से जमा किया था। उसने अपने घर के शिक्षकों को दशमांश दिया और कहा, अब प्रभु के साथ मेरा लेन देन बराबर हो गया है, अब मैं अपने आप को प्रभु के सेवकों के साथ हाथ मिलाने के योग्य महसूस करता हूं। भाई क्राउस ने मुझे बाद में बताया कि वह इस विश्वासी भाई से अत्यधिक प्रभावित हुआ था, जो कई सालों तक गिरजे के संपर्क में नहीं था, फिर भी आज्ञाकारिता से और नियमित रूप से अपने बहुत कम आय का 10% दशमांश के रूप में रखता आया था। उसने इसे बचाया, उसे मालूम नहीं था कब या कभी इसे देने का सौभाग्य उसे मिलेगा। भाई वॉल्टर क्राउस 9 वर्ष पूर्व 94 साल की आयु में गुजर गए। उन्होंने विश्वसनीयता और आज्ञाकारिता से अपने पूरे जीवन भर सेवा की और मेरे लिए और उन सबों के लिए जो उसे जानते थे एक प्रेरणा थे। जब कोई जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने कभी प्रश्न नहीं उठाया, कभी नहीं बड़बड़ाया और कभी बहाना नहीं बनाया। मेरे भाइयों और बहनों, इस जीवन की महान परीक्षा आज्ञाकारिता है। इससे हम उनकी जांच करेंगे, प्रभु ने कहा, ये देखने के लिए कि क्या वे उन सब कामों को करेंगे जिसका आदेश उनका प्रभु परमेश्वर उन्हें देता है। उद्धारकर्ता ने कहा था, क्योंकि वे सब जो मेरे हाथों से आशीष पाएंगे, वे उस नियम का पालन करने से आएंगी जिसके लिए वे आशीष निर्धारित और उससे संबंधित शर्तों पर दी गई थी, जैसा कि वे उन्हें संसार के आरंभ से स्थापित किया गया था। आज्ञाकारिता का हमारे उद्धारकर्ता से बढ़कर दूसरा कोई उदाहरण नहीं है, जिसके विषय में पौलुस ने कहा था, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। अपने पवित्र मिशन का सम्मान करते हुए उद्धारकर्ता ने परिपूर्ण जीवन जीकर परमेश्वर के वास्तविक प्रेम की प्रदर्शित किया था। उसने कभी भी घमंड नहीं किया, वह अहंकार से कभी नहीं फूला, उसने कभी भी विद्रोह नहीं किया, वह हमेशा विनम्र रहा, वह हमेशा निष्ठावान रहा, वह हमेशा आज्ञाकारी रहा। यद्यपि वह धोखेबाजी के गुरु शैतान द्वारा लालच में डालने के लिए आत्मा द्वारा निर्जन में ले जाया गया, यद्यपि 40 दिन और 40 रात उपवास के कारण वह भूखा और शारीरिक तौर पर कमजोर था, फिर भी जब शैतान ने यीशु को बहुत लुभावने और लालच भरे प्रस्ताव दिया, उसने उन सबको अस्वीकार करते हुए हमें आज्ञाकारिता का दिव्य उदाहरण दिया। जब यातना की गतसमनी का सामना किया, जहां उसने इतना अधिक दर्द सहा कि उसका पसीना लहू के बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था, उसने ये कहते हुए एक आज्ञाकारी बेटे का उदाहरण दिया, पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जैसा उद्धारकर्ता ने अपने आरंभिक प्रेरितों को निर्देश दिया था, वैसे ही वह आपको और मुझे निर्देश देता है, तुम मेरे पीछे हो लो। क्या हम आज्ञा मानने को तैयार हैं? वह ज्ञान जिसे हम खोजते हैं, वे जवाब जिसे हम जानना चाहते हैं, और वह शक्ति जो हम आज के कठिन और बदलते संसार की चुनौतियां का सामना करने के लिए पाना चाहते हैं, हमारे हो सकते हैं जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर प्रभु के शब्द दोहराना चाहता हूँ, वह जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है सच और ज्ञान का प्राप्त करता रहता है, जब तक वह सच में गौरवान्वित रहता और सब बातों की को जानता है। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम उन उत्तम उपहारों से आशीषित हों जिनका वादा एक आज्ञाकारी के लिए किया गया, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Our beloved Heavenly Father,
हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे कि हम इस सेशन को जनरल कॉन्फ्रेंस के सेशन को खत्म करते हैं इस सुबह में, हम विनम्रता से अपना प्यार आपकी तरफ बढ़ाते हैं आपके प्यार के लिए, और इतनी अच्छी तरह हमें सुबह मिली जो मैसेजेस हमने सुने जो हमें आपके पास लाते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आज हम सच में लिफ्टेड हुए हैं इन चीजों से, और हम ये चाहते कि हमें आशीषित किया जाएगा जैसे कि हम यहाँ से निकलते हैं, कि हम हमेशा आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और हम अपने दिलों और दिमागों पे यहाँ से ये लेके जाएंगे, और हम अपनी जिंदगियों में इन चीजों का बदलाव लाएंगे ताकि हम आपके पास तक आ सके। और हमें आशीष दीजिए कि हम आपकी चीजें करें, और हम ये मांगते प्रभु जी कि हम आपकी आशीषें प्राप्त करें, और हमारे प्रॉफिट्स और रेवलेटर्स जो हमारे बीच हैं वो भी आशीषित हों जिन्होंने हमें आपके मैसेजेस का ज्ञान दिया है, और हमें आशीष दीजिए कि हम इनको वर्दली जी सकें, और हम यीशु मसीह के बलिदान को याद रखें, और हमें आशीष दीजिए कि आपकी आशीषें हमारे साथ हों ताकि हम आप इस अगले सेशन में आ सकें, और हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
This has been a broadcast of the
100th कोई भी पुनरुत्थान और रिकॉर्डिंग और प्रतिलिपि बनाना इस कार्य का दूसरा प्रयोग करना किसी भी लिखित समिति की वर्जित है।